अब आगे की जो आयात हैं इनमें वो 10 कमैंडमेंट्स हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए थे, और हमारे लिए भी अल्लाह ताला ने यही हुक्म रखे हैं। इनको अगर गिने तो ये 26 के करीब अहकामात बनते हैं, और आज हम इंशाअल्लाह ताला दो अहकामात पढ़ेंगे इनमें से। देखते हैं इनको।
वकदा रब्बुका, और फैसला कर दिया है तेरे रब ने, फैसला कर चुका है तेरा रब, हो गया फैसला, यानी कि अल्लाह ताला का हुक्म आ चुका है। क्या अल्लाह ताबुदु इल्ला इया, नहीं तुम इबादत करो मगर उसी की। ये इबादत का हुक्म अल्लाह ताला ने खुद दिया है कि सिर्फ इबादत होगी तो उसकी और किसी की नहीं, मैं उसकी तरफ से तय हो गया मामला। और इबादत क्या है, इबादत में सजदा भी आ जाता है, दुआ भी आ जाते हैं, सदका और खैरात भी आ जाता है, नजर व नियाज भी आ जाती, कि सब सिर्फ उसके लिए होगी और किसी के लिए नहीं होगी। और इबादत के अंदर खुद को इंतहाई जलील कर देना, अल खुदू व तजल्लुल, अपने आप को बिल्कुल गिरा देना, बिछा देना मोहब्बत के साथ, ये होती है इबादत। यानी कोई इसलिए नहीं खुद को झुकाता कि कोई मुसीबत है, कोई किसी ने सर पे डंडा रखा हुआ, नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे मोहब्बत है। तो अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का सबसे पहले हुक्म दिया, और याहू सिर्फ उसकी, सिर्फ उसकी में कोई और शामिल नहीं हो सकता। फिर अब ये नोट कर लीजिएगा कि ये उन लोगों की सिफात है जो आखरत में कामयाब होंगे, जो आखरत के चाहने वाले हैं, वो कैसी जिंदगी गुजारें, सबसे पहले अल्लाह की इबादत। और अल्लाह की इबादत में अपनी फ्री विल के साथ अल्लाह के आगे झुक जाना, अपने आप को सरेंडर कर देना, अल्लाह ताला की खुशी, उसकी रजा, हर एक की खुशी और रजा से ऊपर, और अल्लाह की नाराजगी का खौफ, हर एक की नाराजगी का खौफ से ज्यादा, और अल्लाह के सिवा कोई और ये हक नहीं रखता हो उसकी जिंदगी में कि उसकी खुशी को, रजा को, नाराजी को पहले दर्जे पे ले आए। सबसे पहले दर्जे पे अल्लाह ताला की खुशी और रजा, और उसी की नाराजगी का खौफ होना चाहिए। जहां पे इंसान किसी और की खुशी, किसी और का डर या किसी और की रजा को मुकद्दम कर देगा, प्रायोरिटी दे देगा अल्लाह के ऊपर, वहीं पे तो शिर्क शुरू हो जाता है। यही तो शिर्क है, अल्लाह की खुशी से बढ़ के किसी को और की खुशी आपको अजीज हो जाए। और दूसरी बात, वबिल वालिदैन एहसाना, और वालदेन के साथ एहसान करो। एहसान यानी एहसान किस वक्त में, एक तो एहसान आम ही है कि सारी जिंदगी उनके साथ अच्छा एहसान करना है, मगर खास ताकीद की गई है यहाँ पे, और वो ताकीद क्या है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, जब वो, अगर वो पहुंच जाए तेरे पास बुढ़ापे को, अहदुहुमा औ किलाहुमा, एक उनमें से या दोनों उनमें से, तो अब क्या करना है तुमने, तीन बातें बताई गई। चाहे एक बात आपने नोट की है, अल्लाह ताला ने अपने हक के बाद किसका हक सबसे पहला बयान फरमाया और जिसका हुक्म दे दिया, वो है वालदेन। और वालदेन भी उस एज में, जिस वक्त के वो बुढ़ापे को पहुंच जाए, उस वक्त उनके हक को और ज्यादा बताया गया कि अब उनके साथ बिल्कुल एहसान का रवैया, और उनके बारे में ताकीदें की गई कि उनके साथ कैसा रवैया रखना है तुम्हें। इसलिए कि अल्लाह ताला खालिक है, वो इंसान को पैदा करने वाला है, मगर जो सबब बनते हैं इंसान के दुनिया में आने का, वो है उसके वालदैन। और आपको पता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसानों का शुक्र गुजार नहीं हो सकता, वो अल्लाह ताला का भी शुक्र गुजार नहीं हो सकता। तो यहां पे अल्लाह ताला ने इसीलिए अपने बाद इंसानों में सबसे पहले जिसके हक की बात की है, तुम्हारे वालदेन है, और उनके लिए क्या फरमाया कि जब वो बूढ़े हो जाएं, बड़ी उम्र को पहुंच जाएं और तुम्हारी निगहदाश्त में हो, तुम्हारी जेरे किफालत हो, तुम्हारे पास हो, तुम्हारे पास रहते हो, अब तुम्हारे पास रहते हैं तो देखें, अब ये क्यों कहा गया आइंदा का पास तुम्हारे, इसलिए कि देखें जो अब जैसे हम लोग हैं दूर अपने वालदेन से होते हैं, तो वो 2-4 मिनट की कॉल कर लेना या 2-4 मिनट के उनके साथ बातचीत कर लेना हफ्ते में एक दफा या रोज भी, या साल बाद जाके उनके साथ 2 हफ्ते गुजार लेना, ये तो आसान है। मगर जिसके पास रहते हैं, जिनके पास उनका वक्त गुजरता है, उनके लिए सबसे मुश्किल होता है डील करना। वो तो आसान ही है, अब आप जाहिर है 10 मिनट की कॉल कर रहे हैं तो वो तो आप अच्छी तरह ही बात करेंगे ना, मसला ही तब आता है जबकि वो आपके पास रहने वाले, तभी गिले शिकवे आते हैं, तभी मुश्किल आती हैं, तभी कई चीजें अनोइंग लगने लगती हैं, क्योंकि इस उम्र में जाहिर है माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं, उनकी कई बातें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल बच्चों वाली हो जाती हैं और अकल शऊर खत्म होने लगता है, और उसी तरह की जिदें, उसी तरह की बातें, उस वक्त में पहुंच के तुमने उनसे नफरत नहीं करनी, उनसे गिननी खानी, उनको बे ना समझ जान के और उनको अकल से आरी समझ के उनके साथ उनको मजाक करना या उनको अकीर जानना या उनसे चिढ़ना, बुरा समझना, बुरा लगना या डांटना, ये नहीं करना। डील करना मुश्किल होगा ऑब्वियसली, इसलिए कि जब बूढ़े हो जाएंगे तो ये सब चीजें हैं, इसी वजह से खास तौर पे बुढ़ापे की बात की गई। देखें जब इंसान जवान होता है तो उसको बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं होती बच्चों की कि उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है और डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है, और फिर जब जवान होता है, वालदेन जवान होते हैं तो वो काफी हद तक सेन बातें कर रहे होते हैं, बड़ी मतलब अकल वाली बात करते हैं, लेकिन जब बूढ़े होते जाते हैं तो जाहिर है अकल आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, रजील उम्र की तरफ जाते हैं, वो तो यही सोच रहे हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो दूसरा बंदा जान रहा होता है कि अब उनकी समझ उस लेवल की नहीं रही है और वो ऐसी बातें करने लगे हैं जो कि सही नहीं है, और बाज दफा अपने लिए उनके लिए भी नहीं सही होती, उसमें जिद करने लगते हैं, तो ऐसे में तुमने क्या करना है जब तुम्हारे पास रहते हुए ऐसा होगा। फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो ना तुम कहना उन दोनों को उफ। उफ क्या है? उफ का लफ्ज हालांकि कितना छोटा सा लफ्ज है, मगर इसी के अंदर छुपी हुई है दिल की घुटन, कराहत, क्या मसला है, नाराजगी। यानी इंसान बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा कुछ भी, उफ वो इस तरह करना, हकारत, नापसंदीदगी और बहुत माइन्यूट सी, इतना भी ना कहना, इसलिए कि उनके दिल पे बहुत ये गरां गुजरेगी, उनका दिल इससे जख्मी हो जाएगा। देखिए बदजुबानी करना, बहसें करना, झगड़े करना, वो तो दूर की बात है, उफ भी नहीं कहनी। अल्लाह कि जरा सा भी ऐसा रवैया नहीं रखना जो कि बदतमीजी का, बदखलाकी का हो, बुरी बातें और लंबी चौड़ी तो दूर की बात है। अल्लाह ताला ने एक कलिमा बता के, अभी जैसे आप हम कहें हमारे पास तो उफ का लफ्ज ही नहीं है, हम हमारे यहां तो कुछ और ही लफ्ज बोले जाते हैं, तो जो भी लफ्ज बोले जाते हैं, मसलन है कि आपके यहाँ ओ गॉड, या ये उसका उफ है, ठीक है। इसी तरह कई जगह पे ऐसे हो जाता है बच्चों का रवैया कि आंखें रोल करने लगते हैं, ऐसे करते हैं, यानी बाप या माँ की बात के जवाब में हूं, इतना सा भी नहीं कहना, कैसे दिल कट जाता होगा उस माँ का, और उसको वो सारी बातें याद आती होंगी कि उसने किस तरह मौत की कश्मकश बर्दाश्त की थी इस बच्चे को पैदा करने के लिए। एक माँ ही जानती है इस तकलीफ को कि मेरी जान जा सकती थी, लेकिन मैंने वो तकलीफ सह के बच्चे की खातिर, और कैसे मैंने इसको पैदा किया, कैसे मैं इसको दूध पिलाया, कैसे मैंने अपना आराम कुर्बान किया। सोई हुई माँ रातों को उठ जाती है, उठते ही बच्चे को मोहब्बत से उठाती है, कहीं उसको गर्मी ना लग रही हो, सर्दी ना लग रही हो, ये ना हो जाए। और वो मोहब्बत करने वाला बाप सारे दिन की थकावट के बाद बच्चे की चीखों पुकार बर्दाश्त करता है, अपनी थकावट भूल जाता है, गधे की तरह सारा दिन काम करता है, मेरे बच्चे की फ्यूचर अच्छा हो, उसको ना किसी चीज की तकलीफ हो, उसको हर चीज मुयस्सर हो, उसको हर तरह का आराम मिले। और एक बात बच्चा तोतली जुबान में 100 दफा कहता है ना, 100 दफा ही माँ बाप खुश होते हैं कि आज हमारे बच्चे ने ये लफ्ज कहा। और बच्चा चलने लगता है, माँ को ऐसा लगता है जैसे मैं भी हल्की हल्की प्रवास करने लगी, उड़ने लग गई, और बातें करने लगता तो उसकी बातें हर जगह बताती फिरती। बाप ठंडी छाऊं की तरह होता है। तो अल्लाह ताला इंसान को फरमाता है, तुमने ऐसी हस्तियों को जिन्होंने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानियां दी, ये तुम्हारे लिए काबिले एहतराम है, इनको उफ भी ना कहना कि इनको कोई बात तुम्हारी जुबान की बुरी लग जाए। देखिए ये रिश्ता ऐसा होता है, माँ बाप के इस दिल में अल्लाह ताला ने नेचुरल बच्चों की मोहब्बत डाली हुई है, लेकिन बच्चों के दिल में माँ बाप की मोहब्बत नहीं होती, नेचुरली बच्चों के दिल में नहीं होती। तो इसलिए अल्लाह ताला ने बच्चों को कहा कि तुम माँ बाप के साथ ऐसे ना करना, वाला तनहर हुमा, और ना तुम उनको झिड़कना, अपने माँ बाप को झिड़की ना देना, डांटना नहीं, कोई ऐसे हकारत के कलिमात ना कहना, कोई ऐसी सख्त बात ना कहना, लाउड ना होना उनसे। तो कई दफा इंसान उफ तो नहीं कहता, लेकिन लाउड होता है, शाउट करता है, वो भी नहीं करना। वकुल्लहुमा, और कहना उनको कौलन बात करीमा, इज्जत वाली। अब एक एक चीज गिनते जाएं कि क्या क्या आ रही है, 10 तो चीजें हैं, 10 कमेंडमेंट्स हैं, लेकिन ये जो एक एक चीज है ना, ये अलग अलग एक एक हुक्म आ रहा है, इसको भी आप देखें। एहसान उनके साथ करना, उनको उफ नहीं कहना, उनको झिड़कना नहीं है, उनको कितनी सारी बातें वालदैन के लिए आ रही। अब मुझे बताएं, जहां पे उफ कहने की इजाजत नहीं है, वहां पे ओल्ड होम में छोड़ के आने की इजाजत हो सकती है कि वहां पे फेंक आना? अल्लाह अकबर। तो क्योंकि इस बारे में पूछ बहुत सख्त है, यानी कुछ गुनाह ऐसी हैं कि उनकी सजा जो है ना, इंसान को इस दुनिया में भी मिलती है, आखरत में मिलनी ही है, लेकिन इंसान मरता नहीं है जब तक कि उनकी सजा ना भुगत ले इस दुनिया में। और उनमें एक वालदैन की नाफरमानी भी, और इसी को हम बहुत लाइटली लेते हैं। अक्सर देखा गया कि और लोगों के साथ फिर भी हंस खेल के बात करेंगे, हंस खेल के मिलेंगे दोस्तों के साथ, इनके साथ, लेकिन जहां माँ बाप आ जाएंगे वहां पे बिल्कुल ऐसा सर्द रवैया, और एक मुसीबत की तरह, और एक उनका हाल जानने की कोशिश ही ना करना। और आज ये चीज कयामत की निशानियों में से एक है, लेकिन आज ये चीज वाकई, ये निशानी भी पूरी हो गई है कि खाल खाल कोई ही मिलता है जो वालदेन को खुश करने वाला बच्चा हो, जो ऐसी औलाद हो, वरना ज्यादातर वालदेन रोते हुए ही नजर आते हैं। अब यहाँ पे आया बात कि कौलन करीमा उनको कहो, ऐसी बात जो इज्जत वाली, जो उनका दिल खुश कर दे। तुम खुद ढूंढो कि कैसी वो बात कैसी हो सकती है, यानी ऐसी बात करो जैसे बहुत तमीज के साथ, मुहज्जब अंदाज में, करीम होता है नोबल, नोबल बात करो। एक आदमी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह माँ बाप का क्या हक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोनों तेरी जन्नत है या तेरी जहन्नम है, यानी अगर खुश कर दिया तो जन्नत, अगर ना खुश किया तो जहन्नम। फरमाया ना, माँ के कदमों तले जन्नत है, तो अगर कदमों तले किसी के कोई चीज हो, खुद सोचें कोई चीज भी हो। अब पैर के नीचे मिसाल के तौर पे कोई छोटा सा एक कीड़ा हो, अब आप चाहें तो उसको मसल दें, चाहें तो उसको छोड़ दें। इसी तरह तुम्हारी जन्नत जो है ना उसके पैर तले है, चाहे वो तुम्हारी जन्नत को क्रश कर दे और चाहे तुम्हारी जन्नत को तुम्हारे लिए रहने दे। ये है बात। एहसान दानिश उनकी एक किताब है जहाने दानिश, उसमें उन्होंने अपनी माँ के बारे में लिखा है कि जब मेरी माँ बीमार हुई तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि ये तो मेरा सरमाया है, मैं इसमें किसी की शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुम्हें बिल्कुल इनको हाथ नहीं लगाने की जरूरत, इनकी सारी खिदमत मैं खुद करूंगा। और गरीब आदमी थे, ऑथर जाहिर है गुर्बत में जिंदगी गुजर गई थी उनकी, और घर में कुछ धोने वोने का इंतजाम वगैरह नहीं था। तो वो लिखते हैं अपनी किताब में कि मैं माँ का बिस्तर उठाता, रोजाना 2 मील दूर नहर पे जाके धोता, हवा में उसको सुखाता और सुखाते हुए लेकर आता, और जब तक माँ जिंदा रही मैं उसकी चारपाई पे लग के खड़ा हो गया। देखिए आप सर, क्योंकि माँ बाप ऐसी चीजें जिनका बदल नहीं ला सकता इंसान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में अब्बा में पड़ाव डाला था और अपनी माँ की कब्र पे बैठ के घंटों रोए थे। सहाबा भी हैरान हुए कि किसकी कब्र है जिसके ऊपर इतना रो रहे हैं। एक सहाबी आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मेरा बाप है मुझसे पूछे बगैर मेरे पैसे ले लेता है, उसे पूछता भी नहीं। तो बात एक समझ जाती है कि हाँ बेटा कमाई कर रहा है, बाप पूछ तो ले बेटे से। अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा बुलाओ उसको। उसको बुलाया, उसे पता चला कि मेरे बेटे ने मेरी शिकायत की है, तो उनको बड़ा दुख हुआ बाप को। तो उन्होंने कुछ अशआर कहे, जुबान से नहीं कहे, दिल ही दिल में शेर कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आ रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके आने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, या रसूलल्लाह अल्लाह ताला फरमा रहा है वो आदमी आ रहा है उससे कहना पहले वो शेर सुनाओ जो तुम्हारी जुबान से तो निकले नहीं मगर तेरे अल्लाह ने सुन लिया, वो शेर सुनाओ। अच्छा वो आदमी आया जो बाप था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई वो शेर सुनाओ पहले जो तुम्हारी जुबान से भी नहीं निकले तुमने दिल में ही कहे। वो कहने लगा या रसूलल्लाह अल्लाह पे ईमान हमारा बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है इन बातों की वजह से, क्या कहने उस रब के कि मैंने तो जुबान से भी नहीं कहे, जुबान पे आए ही नहीं और रब ने सुन लिया, सिर्फ ये तो मेरे जहन में ही थी बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने क्या कहा? कहने लगा मैंने कहा जो शेर थे उसने अरबी में सुनाए उनका तर्जुमा आपको, जाहिर है वो तो बात नहीं बन सकती मगर उनका तर्जुमा आपको मैं बताती हूँ कि उसने कहा कि मैं ये कह पा रहा था कि मेरे बेटे जिस दिन तू पैदा हुआ हम तो उसी दिन मर गए, फिर हमने तेरे लिए जीना शुरू कर दिया, यानी हम अपने लिए नहीं फिर जीते थे, फिर तेरे लिए जीते थे, हम अपने लिए जीना छोड़ गए जिस दिन तू पैदा हुआ, हमने अपना सब कुछ तुझ पे लगा दिया, तेरी एक मुस्कुराहट देखने के लिए कोल्हू के बैल की तरह गर्मी और सर्दी के थपेड़ों को सहते रहे, दुख दर्द झेलते रहे, तुझे तर खिलाने के लिए खुद खुश्क खाया, तुझे ठंडा पिलाने के लिए खुद गर्म पिया, तुझे सुलाने के लिए खुद जागे, तुझे सुख में रखने के लिए खुद दुख उठाए, तुझे ठंडी हवाओं से बचाने के लिए खुद ढाल बन गए, तुझे धूप से बचाने के लिए हम खुद तेरा साया बन गए, चादर बन गए, जब कभी तू बीमार हुआ तो तुझसे ज्यादा हम बीमार हो गए, तेरी आह पे हमारी हाय निकलती, तेरे आंसू पे हमारी चीखें निकलती और हम दोनों माहिए बेआब की तरह तड़पते, पता नहीं तू मर ना जाए, यानी इस धड़का लगा रहता हमें कि कहीं तू तुझे कुछ हो ना जाए, बीमारी और मौत अपने वक्त पर आती है पर तेरा बीमार होना हमें सारी रात तड़पाता था, हमें ये लगता था तू नहीं हम बीमार हो गए, तू नहीं हमें दर्द उठाए, तू नहीं तो हम तड़प रहे, और एक आंसुओं का सैलाब था जो थमता नहीं था और अंदर में गमों की घटा थी काली स्याह जो छटने का नाम नहीं लेती, इसी तरह हम चक्की में पिसे और कोल्हू के बैल की तरह हम जुते चले और थके और बिटे और पिसे, और क्या हुआ हमारी जवानी का रस चढ़ता चला गया और तेरे बचपन में जाके वो भरता चला गया। यानी जैसे समझने की एक एक कतरा है, वो इधर से नुचड़ रहा है और उधर उसको मिल रहा है। इसने अपनी जवानी गुलाई तो वो बच्चा परवान चढ़ रहा है, अरे वो ऊपर को जा रहा है या नीचे को जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये अपने आप को नचोड़ के उसको दे रहे हैं कि वो अपनी जवानी पा सके। हमारे रंग रूप बिगड़ते चले गए, तेरा रंग रूप निखरता चला गया, हमसे जवानी का रस निकलकर तेरी कमजोर हड्डियों में उतरा और हमसे बुढ़ापे ने रंग छीन लिया, जवानी ने तुझे रूप बख्श दिया। बुढ़ापे ने हमारे पत्ते झाड़ के रख दिए और जवानी ने तुझे बराबर कर दिया, सब्ज़ सरसब्ज कर दिया, तू लहलहाने लगा और हम खिजां के थपेड़ों का शिकार हो गए, तू सीधा हो गया और हम रुकू में चले गए। देखें बच्चा सीधा होता जाता है, खड़ा होता जाता है, यानी वो जवान हो रहा है और वो माँ बाप क्या हो रहे हैं, रुकू में जाते जा रहे हैं, वो झुकती जा रही है उनकी कमर। तू ताकत में आया, हमने लाठियां पकड़ ली, अब हमें उम्मीद लग गई, जैसे हम उंगली पकड़ के चले, जैसे हमने इसके पेशाब पखाने धोए, जैसे हमने इसको लोरियां दी, जैसे हम इसके लिए रोए तड़पे जागे, और कुछ नहीं तो हमारा हाल पूछ लेगा। यानी और कुछ नहीं करेगा तो कम से कम इतना तो करेगा, हमारा हाल पूछ लेगा, हमारा थोड़ा बहुत तो ख्याल रखेगा। लेकिन एकदम तेरे तेवर बदल गए, तेरा मुंह चढ़ गया, तू दोस्त को करीब करने लगा, हमें धक्के देने लगा, हमें गिरेबान से पकड़ के झंझोड़ा, दोस्तों की महफिल में जाके रौनक बना। हमने कभी पुकारा तो तेरे तेवर बदल गए, तूने बड़े सख्त आवाज में कहा क्या सर खाते हो, तो हम दोनों बैठे दोनों परेशान। क्या हुआ, हम परेशान के क्या हुआ, मैं इसे पालता रहा, नहीं, गलती लग गई, इसने मुझे पाला है, मैंने नहीं इसे पाला, वरना कुत्ता भी एहसान मान रहा है। मैं अपनी 40 साला जिंदगी को झुठला रहा हूं, मैंने अपने बेटे को नहीं पाला, मेरे बेटे ने मुझे पाला, जबी तो इसका तेवर बदला, इसका मुंह चढ़ा। अच्छा मेरा बेटा, तू बेटा नहीं बना तो पड़ोसी तो बन जाता, पड़ोसी भी ना बन सका। ये वो दर्दनाक दास्तान है जो अल्फाज के रूप में जब इसकी जुबान पर आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से तो आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अल्लाह अकबर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल रोने की वजह से आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के को पकड़ा और फरमाया कि जा, तू और तेरा माल तेरे बाप उठ के चला जा मेरी मजलिस से। कैसा दर्द था इस उसकी उसके इन शेरों में। और सोचे कि ये कभी नसर में बताया, अगर ये शेरों के अंदर हो तो क्या जबरदस्त बात होगी जो उसने कही। और अब पता है क्या, एक हदीस में भी आता है ना कि जब लोग हुकूमत का पैसा हड़प कर लेंगे, जब लोग अमानत में खयानतें करेंगे, माले गनीमत समझ लेंगे उसको, जब लोग जकात से इनकार कर देंगे, जब दीन से हट के दुनिया का इल्म हासिल करेंगे, माँ बाप के नाफरमान होंगे, बीवियों के फरमा बरदार होंगे, दोस्तों से अच्छी तरह मिलेंगे, बाप को देख के मुंह फेर लेंगे, रास्ता बदल लेंगे, कहीं कोई काम ना कह दे, और भी बहुत सारी उसमें बातें हैं कि ये करेंगे ये करेंगे, मस्जिदों में लड़ाइयां होने लगी, ये मर्द रेशम पहनने लगेंगे, इस तरह करेंगे, तो उस वक्त के बारे में फरमाया, 15 बातें बताई गई, और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब मेरी उम्मत में ये चीजें आ जाएंगी ना, फिर इंतजार करना सुर्ख आंधियों का, जलजलों का, जमीन में धस जाने का, जैसे तस्बीह का धागा टूट जाता है उसके दाने बिखरने लगते, इस तरह आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, जलजल एक के बाद एक, यानी एक के बाद एक, जैसे दाने गिरते हैं ना एक के बाद, इस तरह होने लगे जब ये बातें ट्रू होंगी। और इनमें 2 बातें मैंने आपको बताई कि लोग माँ बाप के नाफरमान हो जाएंगे, दोस्तों से अच्छी तरह मिलेंगे, बाप को देख के मुंह कर लेंगे, यानी ये हाल हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे वक्त में तुम, यानी जब तुम्हारे माँ बाप ऐसी उम्र को पहुंच जाए, तो तुमने ऐसे रवैये नहीं रखने कि उनको बुढ़ापे में पहुंच के अपनी जुबान से तकलीफ दो, तुम्हारी जुबान खुले तो उनके दिल छलनी हो जाए। वालदैन को यहाँ पे ऐसे पोट्रे नहीं किया गया जैसे कोई कांच की गुड़िया सी होती है, एक आंच के दिल है इनके, इसलिए कि वो वालदेन कहते हैं हमने तो इसको पैदा किया, इसको पाला, इसको आज ये उठ के हमें ही कहता है आपको क्या समझ है, आपको क्या पता, आप आराम से बैठे। आज कयामत की निशानियां वाकई पूरी हो गई कि आज वालदेन बच्चों को खुश करने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ के बच्चे वालदेन को खुश करने की। वालदेन कहते हैं हमारे मुंह से ना कोई ऐसी बात निकल जाए कि भाई इन इनको गुस्सा ना आ जाए। आज आज बच्चों ने क्या कौले करीम कहना है, वालदेन कौले करीम कहने की कोशिशों में लगे रहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वख्फिद लहुमा जनाहल दुल्ली मिना रहमा, तुम झुका दो अपने कंधों को, अपने बाजुओं को उनके सामने आजी के साथ रहमत से शफकत से उनके आगे झुक जाओ। यानी आजी का रवैया रखने, जिस्मानी पोस्चर भी ऐसा हो कि झुके हुए हो, और तुम्हें वैसे भी तुम उनके सामने अपने आप को नीचा रखो। यानी जैसे जैसे अपने आप को, यानी फिजिकली नहीं भी सही, एक फिजिकली भी होता है नीचे करना, अपना आजी करना, लेकिन अपने आप को वैसे भी उनके सामने बिछा दो, यानी उनकी बात को इस तरह तुम्हारे होगी कि तुम बिछे हुए हो उनके सामने। जिसको हम बिछे हुए कहते हैं उसके अंदर जरूरी नहीं कि आप नीचे ही लेट गए, मगर उसका मतलब है कि आपका दिल बिछा हुआ है उनके आगे, जैसे किसी ताकतवर के आगे कोई होता है। इस तरह तुम उनके आगे, जैसे गुलाम होता है ना अपने आका के आगे, कोई ताकतवर आका है उसके आगे कैसे बिछ जाता है, कैसे नीचा अपने आप को कर लेता है, इस तरह तुम अपने आप को नीचे झुका दो उनके आगे। वकुर रब्बिरहमहुमा, और तुम कहो उनके लिए, दुआएं करो उनके लिए। अल्लाह ताला ने सोचे दुआ भी सिखा दी, रब्बिर हम हुमा, अल्लाह ए मेरे रब इन दोनों के ऊपर रहम फरमा। कमा रब्बा यानी सगीरा, जैसे इन दोनों ने मुझे पाला बचपन में, जैसे ये दोनों मेरे साथ थे, इन्होंने मेरे साथ रवैया किया बचपन में। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को ले जाके कहाँ खड़ा कर दिया कि बचपन की यादें उसको दिलाई, तो अपने बचपन को याद करो। अगर आप अपने आज को याद रखोगे ना, जिस वक्त हम जवान हैं, हमारे अंदर ताकत है, तो हम कभी भी उनके साथ ये रवैया नहीं कर सकते जो कि यहाँ पे दिया गया। जब तक आप अपने उस टाइम को ना याद करें जिसमें आप बिल्कुल हेल्पलेस थे, आप कुछ करने के काबिल नहीं थे, बिल्कुल बेआसरा थे, अपनी खुराक भी खुद नहीं ले सकते, अपनी गंदगी साफ नहीं कर सकते थे, ऊपर मक्खी भी बैठ जाए तो अपने मुंह से उड़ा नहीं सकते थे, बिल्कुल बेयार और मददगार। उस वक्त माँ ने कितनी मोहब्बत की थी, उस वक्त माँ ने 9 महीने पेट में रखा था, पैदा हुआ था तो 2 साल दूध पिलाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तुम खा नहीं सकते थे, माँ तुम्हारे पास बैठ के तुम्हें घंटों लगाती थी खिलाने के लिए, तुम बोल नहीं सकते, तुम्हारे पास बैठ के तुम्हें बोलना सिखाती थी, तुम तोतली आवाज में, दोतली जुबान में बात करते थे, तुम्हें किस तरह वो तुम्हारी बात को समझने की कोशिश करती थी, तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज उसने सिखाई, तुम्हें अपने खानदान से मुतारिफ कराया, तुम्हें किस तरह हकूक व फराइज सिखाए, किस तरह तुम्हें स्कूल भेजा, किस तरह तुम्हारी खातिर दुख उठाए। आज तुम जवान हो गए, तुम्हारी सलाहियतें नशो नुमा पा गई, आज वो माँ तुम्हारी तवज्जो की मुस्तहिक है, फिर बाप को देखो, उसने जवानी गला दी तुम्हारी जरूरियात, तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, सारा सारा दिन लगाया, रातों की नींद कुर्बान की, खुराक तुम्हें मिले, अच्छी तालीम तुम्हें मिले, आज वो बाप तुम्हारी तवज्जो का मुस्तहिक है। देखो तो सही उन्होंने क्या क्या खिदमतें तुम्हारे लिए अंजाम दी, कोई ऐसी बेलौस खिदमत कर सकता है? तो जिन्होंने अपनी जवानी गला के तुम्हें जवान किया, अब उनका बुढ़ापा तुम्हारे लिए कदरों कीमत वाला होना चाहिए। बुढ़ापा एज एज सच एज इट इज ही इज्जत का मुस्तहक है, लेकिन अगर वालदेन बूढ़े हो जाएं तब तो और भी ज्यादा, उनके दिल का ख्याल रखना, दिल ना दुख जाए, क्योंकि इस दिल में तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत है, इस दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। और आज देखें हम सब अपने आप को देखें, मैं यही कह रही हूँ, आप अपनी औलादों को ना देखेंगे वो जी ऐसे वो, हम अपने आप को देखें, हम सब से कहीं ना कहीं कोताहियां जरूर हुई हैं, हम सब से कहीं ना कहीं उफ क्या बहुत बहुत कलिमात खुद कहे गए हैं। अब हमने क्या करना है उनके लिए, ये दुआ अगर वो जिंदा है तब भी, अगर वो जिसके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं तब भी ये दुआ उनके लिए मांगनी है, रब्बे रहम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। देखिये अल्लाह ताला ने भी बचपन याद कराया, याद करो वो बचपन, तब तुम्हारे दिल में इनके लिए शफकत आएगी, मोहब्बत आएगी। तो हमने एवरी नमाज में, अब से हमारा इंशाल्लाह ताला ये तरीका होगा, एवरी नमाज में सलाम फेरने से पहले, इसलिए सलाम फेरने से पहले कह रही हूं ताकि आपको याद रहे, सलाम फेरने से पहले जो हमारी आखिरी दुआ हो वो यही हो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। इंशाल्लाह कि हम अपने वालदैन का हक तो दे नहीं सकते, उनके सामने कितनी हमने, देखे यहाँ पे तो कहा गया उनके सामने अपने पर बिछा दो, निनकसारी आजी झुकाओ बिछ जाओ, आवाज भी पस्त रखो, उनके सामने आगे बढ़ के बोलना तो दूर की बात है, ऊंचा बोलना ये बोलना तो दूर की बात है, उफ भी नहीं करना, ना उनसे आगे बढ़ के चलना है, ना उनसे ज्यादा बड़ी अपनी बात को रखना है। और रहमत का लफ्ज देखें, मोहब्बत नहीं है रहमत है, और रहमत बेलौस होती है, किसी गर्ज के बगैर होती है। तो यानी वालदेन जब बूढ़े हो जाए तो इंसान अब कहता है इनसे क्या मिलना है ना, पहले तो इनकी जरूरत थी, अब मुझे केयर चाहिए थी, अब क्या इनसे मिलना, अब तो ये फालतू चीज है ना? इंसान अपने बच्चों की तरफ देखता है, अब इनको क्या, ये तो एक्स्ट्रा है, नहीं तो ये तुम्हारी रहमत के मुस्तहिक है। देखो कैसे उस रब्बे करीम ने वो वालदेन जब अपना खुद हक नहीं ले सकते, वो उनको वो फरमा दिया उनका हक दिलाने के लिए, खुद रब्बे करीम उनकी वकालत फरमा रहा है, नरमी रहमत और दुआ। क्या दुआ उस प्यारे रब ने सिखा दी, इन पे रहम फरमा अल्लाह, ये मेरे मोहसिन है, वो जिन्होंने मेरी परवरिश की, मुझे संभालने वाले, इस मुकाम तक पहुंचाने वाले, अल्लाह बचपन में इन्होंने मेरे साथ रहमत की है, शफकत की है, अल्लाह तू इन पे मेहरबान हो जा, इनके बढ़ापे के मसाइल को, इनकी तलखियों को आसान कर दे। हाफिज इब्ने हाफिज अबू बकर अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि उन्होंने हजरत बुरईद रज़ी अल्लाह अन्हु से, उन्होंने अपने वालिद से यह रिवायत किया है कि एक आदमी तवाफ में था और उसने अपनी वालदा को उठा के तवाफ कराया था, तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मैंने अपनी वालदा का हक अदा कर दिया, आपने फरमाया नहीं, एक सांस के बराबर भी नहीं, यानी जितनी एक सांस की कीमत है ना उसके बराबर भी नहीं, तुमने अभी अपनी वालदा का हक दिया। तो उनके साथ वालदा के साथ भी रवैया तभी अच्छा होगा जब आप बचपन को सामने रखेंगे, बचपन की मोहब्बतों को शफकतों को, तब अगर आज को देखेंगे ना तो शायद ना हो सके सही, क्योंकि बुढ़ापा जाहिर है कमजोरी है और उसके अंदर इंसान कई बातें एक करके फिर बार बार रिपीट भी करता है, कई नासमझी की बातें भी होती हैं, तो इस वक्त में गुस्सा आ सकता है, अगर आप अपना बचपन याद करेंगे तो फिर नहीं आएगा। और जाहिर है जब इंसान खुद जवान होता है तो फिर तो वो अपनी जवानी के जोम में इतना होता है, फिर उसको छोटी छोटी बात पे भी गुस्सा आने लगता है। रब ने फरमा लिया अपना बचपन याद कर लो ना, तुम भी तो एक एक बात कितनी कितनी दफा रिपीट करते थे, जितनी दफा भी करते थे माँ बाप शफकत से ही सुनते थे। अल्लाह अकबर, जब तुम्हारे पास कुव्वत नहीं थी तब उन्होंने तुम्हारा कैसे ख्याल रखा था, आज इनके पास कुव्वत नहीं, जब तुम्हें अपनी जरूरियात के पूरा करने के लिए उनकी मोहताजी थी, आज इनको मोहताजी है तुम्हारी। इसी तरह आज बहुत सारे वालदेन ऐसे हैं कि जिनको माल की तो नहीं जरूरत होती, उनको वक्त की जरूरत होती है, वक्त दिया जाए उनको, उनके पास बैठा जाए, अब उसमें भी अपने बचपन को याद करें, अगर जब हम बच्चे थे तो वालदेन पैसों की गड्डियां लाके हमारे पास रख देते, हमारे सरहाने रख देते और एक मेड के पास छोड़ देते, तो क्या वो काम हो सकता था ना, उन्होंने भी तो अपनी सारी जरूरियात काटी, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया, अपनी जवानियां घुलाई, पढ़ाया लिखाया, वक्त दिया, तो तब परवान चढ़े हम। आज हम सोचते हैं कि बस इनके लिए मेड रख दें, इनको खाना पीना सब टाइम पे मिल जाए, दवाई टाइम पे मिल जाए, बस ठीक है, अब और हम क्या कर सकते हैं, और इनको क्या चाहिए। एक साहब के बारे में पता चलता है कि वो अपनी वालदा के पास जब जाते तो जाके उनको वो बचपन की नज़में सुनाते, वो छोटी छोटी कहानियां, वो बातें पहले वक्त की, के ताकि उनका दिल बहले उससे। तो यानी किस तरह से उनका दिल बहलाना, कैसे उनको खुश रखना, उनका दिल खुश कर देना, ये खुद ही इंसान को सोचना। हर एक के वालदैन के डिफरेंट एक शौक और वो होते हैं, किस तरह से उनको खुश किया जाए। सिर्फ वहां पे वालदैन की यानी नहीं बात माननी जहां पे वो कोई अल्लाह ताला की नाफरमानी की बात करें। तो देखिए दो एक्सट्रीम पे लोग चले जाते हैं, एक एक्सट्रीम हर कम ही मिलती है लेकिन है जरूर, कि वालदेन कहेंगे कि सूरज अगर मगरिब से तुलू होता तो उन्होंने कहा मगरिब से तुलू होता, चाहे अल्लाह की बात आ जाए, रसूल की बात आ जाए, वो तोड़ के वालदेन का हुक्म मानना। लेकिन वहां पे नहीं माना जाएगा जहां पे अल्लाह रसूल का हुक्म आ जाएगा। मसलन है कि अल्लाह का हुक्म यह है कि सिला रहमी करो, वालदा कह रही है कि नहीं तुमने फलां अपनी पुप्पी से बात नहीं करनी, तुमने अपने चचा से बात नहीं करनी, बाप के साथ तुमने नहीं रखना अपना, इसने मुझे बड़ा तंग किया है। अक्सर होता है कि डाइवोर्सेस हो जाती हैं, फिर वो वालदा के जाहिर दिल के ऊपर बड़ी, या ससुराल वालों ने बड़े जुल्म किए होते हैं और वाकई किए होते हैं, और वो फिर उनके लिए बड़ा, वालदा के लिए बड़ा तकलीफ दे होता है। अब वो बच्चों को कहती है कि तुमने भी नहीं मिलना, या फलां के साथ नहीं मिलना, फलां उस रिश्ते के साथ, तो उस वक्त क्या है, अब मिलना भी है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है सिला रहमी, और वालदा का भी हुक्म मानना, तो आप क्या करेंगे। ऐसे उनको मिलें कि उनको भी ना पता चले कि इनका यानी उनको दुख हो और उनको तकलीफ हो, उनको भी नहीं तकलीफ देनी, लेकिन साथ साथ वो जो अल्लाह का हुक्म है उसको भी पूरा करना। तो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, जैसे उन्होंने बचपन में अपनी पूरी सलाहियतें कुव्वतें लगा के मेरे पर रहम किया। मेरी अपनी एक एक कलकारी को याद करें, कि जब खुश होती थी याद करें कि माँ ने कैसे हंसाया। कई दफा हम खुद माए हम देख रहे हैं बच्चों के साथ, हम खुद ही बच्चे बन जाते हैं, बिल्कुल उनको हंसाने के लिए कितनी तरह की बोलियां ऐसे बोल के दिखाते हैं कि वो हंस दे। अब वो बड़ा बच्चा जब हो जाता है तो अब उससे डिमांड है कि अब तुमने कोशिश करनी है कि तुम इनको कैसे खुश करो, कैसे राजी करो, कैसे हंसाओ, जैसे कल माँ कोशिश करती थी। आज माँ कभी वो कार्टून की वो उसको कॉपी करके वैसी आवाजें निकालेगी, बाप कभी इस तरह की बोली बोलेगा कि ये खुश हो जाए बच्चा। बाप क्योंकि बार दफा बच्चों को ये शिकायत होती है कि इनका क्या करें, इनको हर वक्त गुस्सा ही आता रहता है। तो भाई देखोगे गुस्सा दिलाने वाले काम कौन से हैं, वो मत करो। अगर एक शौहर को पता है कि मेरी बीवी को किस बात पे गुस्सा आता है, बीवी को पता है शौहर को किस बात पे गुस्सा आता है, बच्चे को नहीं पता चल सकता कि माँ बाप को किस बात पे गुस्सा आता है, तो फिर उन नापसंदीदा चीजों को छोड़ दें। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये दुआ तुमने अपने वालिदैन के लिए मांगी, ये दुआ इतनी प्यारी दुआ है, इसलिए कि बाज दफा हम जो हमने उनके दिल दुखाए होते हैं, जो हमने उनको तंग किया होता है अपनी जवानी में, अपनी टीन एज में, उसके बाद अब रिग्रेट्स होते हैं कि हाय अब हम क्या करें, अब किस तरह इसको कॉम्पेंसेट करें। तो उसके अंदर आप ये देखें कि एक हदीस से हम इसमें लेते हैं रहनुमाई, कि हजरत मालिक बिन रबिया सादी के साथ बयान फरमाते हैं कि जिस वक्त मैं बैठा हुआ था उस वक्त एक अंसारी आया और कहा या रसूल्ला क्या माँ बाप के फौत होने के बाद भी इनके साथ कोई नेकी करना मेरे जिम्मे है। आपने फरमाया हाँ, चार किस्म की नेकियां, उनकी नमाज जनाजा पढ़ना, उनके लिए इस्तगफार करना, उनके अहद को पूरा करना, उनके साथ इनके दोस्तों की ताजीम करना और उनके रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना। ये वो नेकियां कि जो मौत के बाद भी काफी, यानी अगर दुनिया में नहीं भी है माँ बाप और आज रिग्रेट हो रहे हैं तो फिर उनके जो दोस्त अहबाब, उनके जो रिश्तेदार थे, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत करते थे, तो उनकी बहन भी आती थी तो उनको इज्जत देते थे, उनकी सहेलियों के घर कोई बकरी जिबा होती थी तो गोश्त भिजवाते थे, यानी जो जो कोई दूर हो आपसे या फौत हो चुका हो उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक कर लें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हलाकत की दुआ मांगी थी मिंबर पे जब चढ़ रहे थे, जो तीन दुआएं मांगी थी जब जिब्राइल अलैहि सलाम आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाई थी, उसमें एक ये भी दुआ थी कि हलाक हो जाए वो आदमी जो अपने माँ बाप दोनों को या एक को बुढ़ापे में पाए और उससे जन्नत नहीं उसने कमाई ना, तो वो आदमी हलाक हो जाए। वो ये दुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसके बाद तो फिर हम ये सोचें कि ये तो एक मस्ट चीज है। और आज ये है कि बड़े बड़े और नेकी के काम, चैरिटी वर्क हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, भाग दौड़ फलां, लेकिन ये जिसका हुक्म अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद दिया, इसके अंदर कोताही है। सबके साथ बातचीत हो रही है, सबका हाल अहवाल हो रहा है, लेकिन जो माँ बाप है उनको पूछा नहीं जा रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के नजदीक महबूब तरीन अमल कौन सा, तो बताया गया नमाज अपने वक्त पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज अपने वक्त पे पढ़ना। फिर पूछा गया कौन सा अमल इसके बाद है, फरमाया माँ बाप के साथ नेकी करना। ये बुखारी और मुस्लिम में रिवायत है, यानी सेकेंड नंबर पे माँ बाप के साथ नेकी करना है। तो माँ बाप के साथ डायरेक्टली भी नहीं गुस्ताखी करनी, और कोई ऐसा काम भी नहीं करना जो गुस्ताखी का सबब बने। और जहां पे किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा फरमाया, क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाह के मुतल्लिक ना बताऊं, क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाह के मुतल्लिक ना। सहाबा ने फरमाया क्यों नहीं या रसूल, आपने फरमाया अल्लाह का शरीक बनाना ये कबीरा गुना, और माँ बाप की नाफरमानी करना ये कबीरा गुना। उसके बाद आपने झूठ की बात की थी जो 3 दफा की थी, तो उसमें सेकंड कबीरा गुना जो है ना वो माँ बाप की नाफरमानी। और ये तो आप सबको पता ना, 3 दफा हुस्ने सलूक के मुस्तहिक का पूछा गया कि मेरे नेक सलूक का मुस्तहिक कौन है, तो 3 दफा फरमाया माँ। और हम सब इसके अंदर अपने कसूरों को देखें कि हमने दोस्तों के साथ भी अच्छा करते हैं, उनके साथ भी अच्छी तरह बोलते हैं, और फ्रेंड्स और सर्कल्स और अपनी उनके साथ, लेकिन जब माँ बाप की बात आती तो फिर वो कहीं ना कहीं डंडी मार देते हैं। यहाँ पे जब अपने पर झुकाने की बात आई, तो इसके अंदर ये भी है कि माँ बाप की अच्छी तरह किफालत करो, उनको पर खर्च करो, उनको अलग ना करो, उन्होंने भी तो बचपन में तुम्हारे पर खर्च किया था। और जैसे परिंदा है ना, जैसे परिंदा अपने उड़ने का इरादा करते है अपने परों को फैला लेता है, और जब परवाज खत्म करने का इरादा कर लेता है अपने परों को सुकेड़ लेता है, झुका देता है, इसी तरह बाजू और पर फैलाना, परों को झुकाना, तवाजो का, इनकसारी का, इज्ज़ का एक इशारा है इसमें। अकड़ अकड़ के ना बात करो माँ बाप के आगे कि कोई वजह से बहुत बड़ी कोई चीज हो और आप क्या चीज है, नहीं। और ये जो हम दुआ करते हैं रब्बना गफिरली वली वालिदैया, सूरह इब्राहिम में आता है ना, तो उसके अंदर भी हम अपनी मगफरत के, अपने वालदैन की मगफरत की भी दुआ करते हैं, उसको भी समझ के दिल के साथ दुआ करें। अल्लाह ताला हमसे ये हकूक अदा करवाए, क्योंकि इसमें हमारी कोताही हुई है, अल्लाह ताला हमारी कोताहियों को माफ कर दे। जो इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने माँ बाप की तरफ रहमत की नजर से देखेगा, अल्लाह ताला उसको हर नजर के बदले हज मबरूर का अजर अता फरमाएगा, हज मबरूर का। तो सहाबा ने पूछा था क्या कोई बंदा 100 दफा भी दिन में रहमत की नजर से देखे फिर भी, आपने फरमाया हाँ। और ये वही देख सकता है ना जिसके पास माँ बाप होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यामत के दिन 3 इंसानों की तरफ अल्लाह ताला रहमत की नजर से नहीं देखेगा, 3 लोगों की तरफ, और उनमें माँ बाप का नाफरमान, आदि शराबी और एहसान जताने वाला। अरे आपको उस बंदे का भी पता होगा जो नौजवान था और मरने के करीब था, लेकिन उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थे ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, वो कह नहीं पा रहा था, उसके मुंह से नहीं निकल रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आपने पूछा कि नमाज पढ़ता है, लोगों ने कहा हाँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इसकी वालदा जिंदा है, तो किसी ने कहा कि हाँ जिंदा तो है, लेकिन ये अपनी वालदा की नाफरमानी करता। तो आपने फरमाया वालदा को बुला के लाओ। उससे पूछा ये तुम्हारा बेटा है, उसने कहा हाँ। आपने फरमाया कि अगर मैं आग जलाऊं और इसको उसके अंदर डालूं तो क्या तुम इसको बर्दाश्त कर लोगे, इसको माफ कर दो। उसने कहा कि नहीं मैं नहीं माफ करती। आपने फरमाया मैं आग जलाऊं और इसको उसमें डालूं तो तुम बर्दाश्त करोगी, तो आग जलाओ और इसको उसके अंदर डाल दो। उसने कहा नहीं मैं माफ करती हूँ। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कलमा कहा, तो उससे कलमा अदा हुआ था। मैंने इतनी हद तक है कि ये जिंदगी के अंदर भी इंसान के लिए एक वो बन जाता है, सजा बन जाती है ये नाफरमानी। रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारा रब जानता है ज्यादा जो तुम्हारे दिलों में। यानी क्या मतलब, यानी तुम उनकी जो कर रहे हो, जो भी उनकी खिदमत है या तुमने उनको रखा हुआ है, तो बेजारी के साथ रखा हुआ है, हाँ मुसीबत है क्या नहीं है, और या किस तरह तुम्हारे दिल में क्या जज्बात है अल्लाह को पता है, या उनसे जायदादें बटोरने के लिए रखा हुआ है कि देखो बूढ़ा मरेगा बूढ़ी मरेगी तो किसी तरह हमें मिलेगा, तो इस वक्त तक इनको अपने पास रखो ताकि ये हो कि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इसलिए रखा हुआ है, या फिर खानदान में वाह वाह के लिए कि जी माँ बाप को इन्होंने ही संभाला था, आखिरी वक्त पे यही थे पास, यही देखो कितने अच्छे हैं ये, इसलिए तुमने रखा हुआ है और इसलिए तुम उनकी केयर कर रहे हो। तो अल्लाह ताला को बेहतर पता है तुम जो तुम्हारे दिलों में, या बाज दफा इंसान उनकी बात को नहीं मानता इसलिए कि वो गलत बात कर रहे होते हैं और वो उसमें उनका नुकसान होता है, तो अल्लाह को बेहतर पता है कि तुम उस इस वक्त उनकी खैर ख्वाही के लिए कर रहे हो। होता है ना बाज दफा कि उनकी वो मसला कहें कि उनको शुगर है, वो कहते हैं कि नहीं हमें मीठा दो, वो बच्चा नहीं मानता, तो अल्लाह को पता है कि इसके अंदर खैर ख्वाही। इन तकूनु सालेहीन, अगर तुम होगे नेक तो इन्नहु काना लिल्अव्वाबीना गफूरा, यानी अगर तुम नेकी का इरादा रखते हो, तुम उनका वो बस ना अपना इलाज नहीं कराना चाहते, वो अपनी दवाई नहीं खाना चाहते, आप उनको जबरदस्ती करके उनको बात कर रहे हैं और उनको जबरदस्ती इस चीज के ऊपर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब अल्लाह को बेहतर पता है आपके दिल के अंदर तो नेकी है ना, आप उनके हक में कोई कमी नहीं कर रहे, वो नासमझी कर रहे हैं, कभी गुस्से में कर रहे हैं, कभी वो किसी और उसमें है, वो नहीं समझ रहे उस बात को, तो अल्लाह तो को पता है कि आपका दिल कैसा है। या बाज दफा वो गलत अकीदे पे होते हैं, आप उनकी नहीं मानते, तो अल्लाह रुजू करने वालों को उनको माफ करने वाला। इसके अंदर ये भी आ सकता है कि कभी इंसान से गलती हो जाती है, ना समझी में बेअदबी भी हो जाती है, कभी वो उफ कर भी देता है, कभी वो कुछ आगे से बात उनको बदजुबानी कर देता है, उसके बाद उसको एहसास होता है, इंसान कमजोर है ना, गलती सबसे हो जाती है, तो फरमाया अभी सलाह कर लो, अब तुम ठीक हो जाओ, अगर तुम वापस रुजू करोगे, वापस आ जाओगे। अवाब क्या है, बार बार रुजू करने वाला, अगर तुम वापस रुजू करने के लिए अल्लाह की तरफ आओगे, माफी मांगोगे, तो अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ कर देगा, उसको गफूर पाओगे। और इसके अंदर फिर हम सब के लिए एक रास्ता निकल आता है कि हमने जो भी पिछले जमाने के अंदर की हैं गलतियां, माँ बाप जिंदा हैं तो हम उनसे माफी मांगे, और अगर नहीं है तो हम फिर अल्लाह ताला से माफी मांगे और उनके लिए भी मगफरत की दुआएं करें, वो तो दुआ हर सूरत ही करनी है, मगर जहां पे गलती हो जाए तो जितनी भी दूर निकल जाए। अवाब वो है कि जो यानी रजू कर लेता है, वापस आ जाता है, चाहे जितनी भी दूर चला गया लौट आता है, तो लौट आएंगे वो जो ना समझी में माँ बाप की परवाह नहीं की, या उस वक्त ना कोई खिदमत की, या उस वक्त बड़ी बड़ी बातें कर दी, तो अब अल्लाह ताला इतना मेहरबान है, वो बंदे को इस रिग्रेट में नहीं रहने देता, वो कहता है अब तुमने अगर नेक बनना चाहते हो ना, तो अगर तुम्हारे अंदर नेकी का इरादा है और तुम समझते हो कि मैंने इससे गलती हुई है, तो वापस आ जाओ, अपनी गलतियों का अजाला कर लो, जब तुम पलट आओगे ना तो फिर तुम देखना कि अल्लाह ताला को गफूर पाओगे। आप देखें कि मेरा नहीं ख्याल के कोई भी बच्चे ऐसे होंगे जिनसे कभी भी नहीं कोई गलती हुई, हर एक से कभी ना कभी माँ बाप के हक में कोई कमी, कोई कोताही, कभी कोई, अरे हम इंसान है, जल्दबाजी भी है, गुस्सा भी है, अकल भी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं गलतियां तो हुई, तो अब हम पलट आए। अब यहां तक वालदैन का चैप्टर तो मुकम्मल हुआ।
اللہ تعالیٰ ان آیات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنتے ہیں.
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا